श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक नंबर 51 देवहु नाम पूर्यः द्वा उत्तरेण पुरंजनः राष्ट्रम् उत्तर पंचालम् याति श्रुतधरान्वितः देवहु नाम पूर्ज्या द्वा उत्तरेण पुरंजनः राष्ट्रम उत्तर पंचालम् जाति श्रुत धरानितः देवहु देवहु नाम नाम से विख्यात पूर्या पुरी का द्वाहा द्वार उत्तरेण उत्तरी दिशा में पुरंजनः राजा पुरंजन राष्ट्रम देश उत्तरः उत्तरी पंचालम पंचाल जाति जाता है श्रुतधरान्वितः अपने मित्र श्रुतधर के साथ। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की उत्तर दिशा में देवहु नामक द्वार था जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ उत्तर पंचाल नाम का स्थान को जाया करता था। तात्पर्य दोनों कान उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थित है। दक्षिण दिशा में स्थित कान अत्यंत प्रबल है और इंद्रिय भोग की बात सुनने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु उत्तर दिशा में स्थित कान गुरु से दीक्षा लेने तथा चिदाकाश पर ब्रह्म जाने का काम आता है। दाहिना कान पितृहू कहलाता है जिसका अर्थ है कि इससे उच्चतर लोक तथा पितृलोक की प्राप्ति की जाती है, किंतु बायां कान जो देवहु कहलाता है और भी अधिक उच्चतर लोक जैसे महालोक तपोलोक तथा ब्रह्मलोक या इनसे भी ऊपर के लोक को जहां मनुष्य स्थायी रूप से स्थित होने की इच्छा रखता है प्राप्त करने के काम आता है। भगवद गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में इसका व्याख्या की गई है। जानति देवव्रता देवान पितरों जानति पितृवता भूतानि जानति भूतेज्य मज्जाजिन अभिमान। जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं के बीच में उत्पन्न होंगे, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वे उनके बीच जन्म लेंगे, जो पूर्वजों पितरों को पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरा पास रहते हैं। जो लोग इसी जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रहना चाहते हैं वे पितृलोक को जाना चाहते हैं, ऐसे लोग वैदिक आदेश को दाएं कान से सुनते हैं, किंतु जो लोग तपोलोक ब्रह्मलोक वैकुंठलोक या कृष्णलोक जाना चाहते हैं वे ऐसे लोक में पहुंचने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी होनी है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्र निमीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्री पद कमलम श्री गुरोन वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जतम सहगण रघुनाथानीतम तम सजीवम साद्वैतम सवधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदे गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपा करके दोनों हाथ जोड़ के और जगन्नाथ का प्रणाम मंत्र थोड़ा मेरा पीछे बोलिए। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन सत्संग में श्री श्री कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। काल रथ यात्रा था, इसलिए जगन्नाथ का प्रणाम मंत्र इसलिए का इधर हम लोग प्रणाम करते हैं तो भगवान जगन्नाथ पुरी में रहते हुए प्रणाम को स्वीकार कर लेते हैं। तब जय जगन्नाथ कहते हैं। श्लोक जो भागवत श्लोक होता है, भागवत श्लोक का एक ही शब्द को ही डेली उच्चारण करता है, डेली एक ही श्लोक का एक ही शब्द उच्चारण करता है, हजार अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। फिर हमें संकोच करते हैं श्लोक पढ़ने के लिए, कहते हैं काल जैसा ग्लोरिफिकेशन चल रहा था महाराज का, महाराज का जब ग्लोरिफिकेशन करते हैं तब शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु का ग्लोरिफिकेशन करना, ये कर्तव्य है। हो सकता है सामना में नहीं आया लेकिन फिर भी मन से ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, मन से फिर भी ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। और ग्लोरिफिकेशन मतलब ग्लोरीफाई पर्सन का ग्लोरिफिकेशन किया जाता है। और हम संकोच करते हैं भागवत श्लोक पढ़ने के लिए कभी कभी, हाँ इसलिए श्लोक का कितना है, क्योंकि जब हमें ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो भगवान का बारे में जब चर्चा होता है, जब भागवत चर्चा होता है भागवत कथा में, नौ लोग अपना आप आकर बैठ जाते हैं। इन्विटेशन की डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, हर दिन नहीं बताना पड़ता है। भागवत कथा में भगवान के बारे में जहाँ चर्चा होता है वहाँ पे जरूर हनुमान जी आते हैं, हम तो आने का दूर की बात है, जरूर वहाँ पे हनुमान जी पदार्थ है। और दूसरा है निद्रा देवी भी आता है। नौ लोग का नाम इधर मेंशन नहीं किया लेकिन फिर भी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी नौ लोग अपना ऑटोमेटिक आते हैं। तो इसलिए कहते हैं भागवत श्लोक हर दिन एक एक शब्द, कम से एक ही शब्द तो उच्चारण करे तब कितना पुण्य हमको मिलेगा। तब आज का जो श्लोक है आप लोग को चर्चा सुनते आ रहे हैं, राजा पुरंजन के गुण का वर्णन, और थोड़े दिन के बाद ये चैप्टर खत्म होगा और लगभग और सात आठ श्लोक और आगे है, आठ दस श्लोक और है। लेकिन आज का जो श्लोक है ये पूर्व दिशा का सारा चर्चा हो चुका है, पूर्व दिशा में जितना नव द्वार का, हाँ पूर्व दिशा में कितना द्वार है, कितना, कोई बोल रहा आठ, कोई बोल रहा नौ, कोई बोल रहा, झगड़ा नहीं करने का, अंदर अंदर झगड़ा नहीं करने का। आप लोग आपका सामने कितना दिन से सुन रहा है, पूर्व द्वार में पांच, पूर्व द्वार ये कहते हैं पूर्व, सामना में दो आंख दो नाक, नाक का दो नासांद्र और क्या है मुख। अब बताइए सारा इंद्रिय एक एक ही काम करता है लेकिन मुख दो काम करता है, एक इंद्रिय दो काम करता है, इसका तो दो होना चाहिए है ना, दो मुख होना चाहिए आगे और पीछे दोनों होना चाहिए, लेकिन सारा इंद्रिय एक ही काम करता है। कान सिर्फ सुनेगा और कुछ नहीं करेगा, आंख सिर्फ देखेगा और कुछ नहीं कर सकता है, और नाक आघ्राण करेगा इसलिए इसको कहते हैं घ्राण इंद्रिय, और आंख को कहते हैं दर्शन इंद्रिय, कान को कहते हैं श्रवण इंद्रिय, और जीह को कहते हैं रसन इंद्रिय। लेकिन ये सारा इंद्रिय हर इंद्रिय एक ही काम करेगा लेकिन मुख दो काम करता है, एक इंद्रिय दो काम करता है, इसका दो होना चाहिए। भगवान कैसा बनाया पता नहीं फिर भी ठीक है, दो काम एक ही साथ में दो काम करता है, मुख क्या करता है भोजन और भजन, भजन और भोजन के लिए भगवान ने बहुत सुंदर मुख दिया है, और कुछ के लिए नहीं, बकवास के लिए नहीं दिया, भजन और भोजन के लिए। भजन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीवी भगवान मनुष्य शरीर जब दिए, मातृ गर्भ में जब आया वहां पे संकल्प लिया, संकल्प प्रत्येक व्यक्ति संकल्प लिया गर्भ के अंदर, क्या संकल्प लिया, प्रभु मेरा को ऐसे दुख से बचाओ, ऐसा दुख से बचाओ जो कि मैं आपका भजन करूंगा। तो भगवान दुख से बचा दिया, दुख से बचा दिए मतलब बाहर निकाले। निकलने के बाद हम लोग वहां संकल्प लिया भजन करने के लिए, लेकिन बाहर आते हुए संकल्प को तोड़ा, भजन छोड़ के भोजन में लगे हुए। कोई भजन नहीं करता है, भजन करेगा तो भजन ऑटोमेटिक आएगा, भजन करेगा तो ऑटोमेटिक आएगा। आपका सामने आप लोग कितने बार भी सुने हैं भगवान दूध का मतलब स्वीट राइस दिया है ना, गोविंद कुंड में भजन कर रहा है कौन, माधवेंद्रपुरी। तो आप बताइए भजन कर रहा है और कुछ नहीं, विचार कुछ भी नहीं, सिर्फ भजन, भजन ऑटोमेटिक। लेकिन सारा संसार का लोग क्या है, भजन को छोड़ के भोजन कहां से आएगा, सुबह से शाम तक भोजन कैसा आना है इसके लिए प्रयास कर रहा है। तब ये जो श्लोक है पहले चर्चा हो चुका है, पांच द्वार का वर्णन, लेकिन आज का छठा द्वार का भी वर्णन हो चुका है, क्योंकि दूसरा कान दो दाई कान का बारे में भी चर्चा हो चुका है, लेकिन आज का जो है वो कान का नाम है देवहु। श्लोक का पहले शब्द अदा है क्या है, देवहु। इस कान में क्या किया जाता है, बहुत सारे लोग कभी कभी हम लोग मजाक करने के लिए बोलते हैं इस कान में जैन करना मतलब इस कान, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कान मतलब हर चीज को दोनों कान में सुन के दिल में धारण करना है, दिल में धारण करके मन से चिंतन करना है प्रभु का नाम को, इसलिए इस कान का अंदर रहना है, इस कान का संस्था में रहना है। तो जो देवहु शब्द आया है, तब ये शब्द जो बाई तरफ कान है उसी कान का संस्कृत शब्द का अर्थ में इसको कहते हैं देवहुरु। ये देवता लोग के लिए, इसलिए कहते हैं प्रभुपद भावार्थ में इसमें मेंशन करते हैं, ये गुरु के लिए जब दीक्षा लिया जाता है, गुरु करना मंत्र लिया जाता है इसी कान में। कभी भी ब्राह्मण जब होते हैं, ब्राह्मण से मालूम पड़ेगा, जब ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं तब उनका एक संस्कार होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का तो संस्कार है, लेकिन ब्राह्मण जो होते हैं उनका जनेऊ संस्कार एक होता है गांव में। तब जनेऊ जब धारण करता है और वहां पे गुरु मंत्र दिया जाता है, तब इस कान से वो मंत्र को दिया जाता है, बाई तरफ जो कान होता है। तो भागवत में हर चीज भागवत में वर्णन है, अब खुद समझ जाएंगे, लेकिन भागवत में हर चीज, कोई ऐसा चीज नहीं है कि भागवत में नहीं है। चलिए बारंबार मैं बहुत बार बताया हूँ, ये जो भागवत है गृहस्थ का लाइफ का पैकेज है, हर व्यक्ति का लाइफ का पैकेज है भागवत। भागवत से सब कुछ मिलेगा, कोई ऐसा चीज नहीं, बिजनेस करना मिलेगा, शादी करना इसमें शिक्षा मिलता है, कैसा पति ढूंढना वो भी मिलता है, और कहाँ झूठ बोलना कहाँ झूठ नहीं बोलना वो भी भागवत में वर्णना है। ऐसा नहीं कि भागवत में नहीं है, कहा हर चीज भागवत में वर्णना है, लेकिन भागवत जो पढ़ेगा समझेगा तब तब ये दो कान का बारे में चर्चा होता है। तो दाई तरफ कान काल का दिन चर्चा हो चुका है, जो पहले जो दो दिन का पहले जो भागवत क्लास लिया होगा उनका चर्चा हो चुका है, लेकिन आज जो है बाई तरफ कान का, बाई तरफ कान को देवहु कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ही श्लोक श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं, क्या श्लोक, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है सुख, कौन सा सुख, संसार में कोई भी व्यक्ति को पूछो, हर व्यक्ति शारीरिक सुख चाहता है, शारीरिक सुख में वो चाहता है, वो यही इतना तक आनंद है इसका, इसका बाद और कितना आनंद है उसको मालूम नहीं है, इसका बाद कितना आनंद है उसको मालूम नहीं, क्योंकि कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं जब भगवान का धाम में चला जाता है व्यक्ति, वहां पे ऐसा आनंद मिलता है कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में ये श्लोक कहते हैं, 9:25 नंबर श्लोक में कहते हैं, जानते देवव्रता देवान पितरुन जानते पितृवता भूतान जानते भूतेज्ञा मज्जाजिन अपिमाम। जो जिस प्रकार और जिसको पूजा करेगा वो उसी लोक को प्राप्त करेगा। इस श्लोक का अर्थ इतना ही है, जो जिस प्रकार जिसको जैसा पूजा करेगा, देवता लोक का पूजा करने से देवलोक जाएगा मतलब स्वर्गलोक जाएगा। स्वर्गलोक में क्या होगा, स्वर्गलोक का जो सुख है वो सुख भोगने का बाद है, और कर्म जो कर्म किया वो पुण्य कर्म, पुण्य कर्म करने के बाद वो पुण्य कर्म का फल समाप्ति हो गया स्वर्ग लोक में, फिर मर्त्य बेसंति, फिर मर्त्य जगत में उसको आना पड़ेगा। और फिर जो पितृलोक की पूजा करते हैं पितृलोक में जाएगा, और भूत प्रेत को पूजा करने वाले भूत प्रेत का अंदर ही जन्म मिलेगा। लेकिन लास्ट शब्द क्या बताते हैं, मौत जाजिन अपि माम, जो माम शब्द है भगवत गीता में लगभग 60-70 बार आया ये शब्द, माम शब्द। भगवान स्वयं बोल रहे हैं मुझको पूजा करोगे मेरा पास आओगे। भगवान एक ही श्लोक में कहते हैं ना, मनमना भव मत भक्त मत जाजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोशी में, आप मेरा पास आओगे तब चार चीज करोगे। जो चार चीज करेगा वो व्यक्ति निश्चिंत मेरा पास आएगा। कहते हैं पहले शब्द आते हैं मनमना भव, मनमना भव भव मतलब मेरा को जो चिंतन करता है, मेरा नाम जो लेता है, क्योंकि चिंतन करना इतना आसान नहीं कलयुग में। चिंतन करने का समय था सत्य युग का, इसलिए मन प्रति मुहूर्त में लगा रहता था, वो समय में मन इधर उधर नहीं जाता था, चले सत्य युग में था। लेकिन अभी के समय में प्रभु का नाम लेने के लिए गया प्रैक्टिकल। और दूसरा अर्थ में कहते हैं सत्य युग में मन से जो चिंतन करता वो प्राप्त होता था, सत्य युग का ऐसा समय था, और मन से ही बच्चा होता था, मन से चिंतन करता था पति, मन से चिंतन करता था मेरा को बच्चा चाहिए। ओ युग में परिवर्तन हुआ, इसलिए कहते हैं कलि युग में हर चीज प्रैक्टिकल, सत्य युग में कहा गया चिंतन करके प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं मनमना भव मत भक्तो, और भगवान का जो भक्त बनता है, भगवान और किसको भक्त, किसी का भक्त बनने के लिए नहीं कहे, कहे मेरा भक्त बनो। अभी संसार में लोग क्या है, कोई किसी का भक्त बनता है, कोई दारू का भक्त बनता है, कोई देश भक्त बनता है, दारू भक्त नहीं तो देश भक्त बनता है, नहीं तो कुत्ता का भक्त, कुत्ता का मतलब सुबह से शाम तक कुत्ता का सेवा में लगा रहता है, उसको कहते कुत्ता भक्त। इसी प्रकार का सेवा में जुड़े रहते सारा संसार का लोग। भगवान यहां पे प्रमाण दे रहा है मत भक्त मेरा भक्त बनो, मत जाजी मेरा को पूजा करो, माम नमस्कार मेरा को नमस्कार करो। भगवान और कुछ नहीं बोले कि इसको पूजा करो इसको पूजा करो, भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरा को पूजा करोगे मेरा को नमस्कार करोगे और मेरा को भोजन खिलाओगे, माम नमस्कार प्रतिजाने प्रियोशी में, आप निश्चिंत हो। प्रतिजाने मत अर्थ है, प्रतिजाने ये शब्द है, ये शब्द का अर्थ भगवान भी संकल्प ले रहे, प्रतिजाने जो शब्द है भगवान भी संकल्प ले रहा है। क्या संकल्प लिए, बोले ये काम करने से आप निश्चिंत हो मेरा पास आओगे, ये भगवान ये संकल्प लिए। लेकिन हमें जितना बार संकल्प लिया हमारा संकल्प टूट चुका है, और हमें तोड़ते रहते संकल्प लेते हैं। आज समझे हमें संकल्प लिया दो चार माला जपना है, कि मंदिर जाना है, क्या वो करना है, भागवत पढ़ना है, कि भागवत कथा में जाना है, फिर हमारा मन में दूसरा कुछ विचार आ गया, इमीडिएटली हमारा संकल्प टूट गया। लेकिन भगवान अपना संकल्प कभी नहीं तोड़ा, कोई जगह पे तोड़ा, कभी सुना भागवत की गीता में कोई संकल्प प्रभु संकल्प लिए भगवान अपना संकल्प तोड़ दी, भगवान यहाँ पे इसलिए भगवत गीता में कहते हैं मत जाजिनो अपि माम, आप निश्चिंत हो मेरा पास आओगे। तो भगवान का धाम में जाने से क्या होगा, वहां पे चारों चीज नहीं है, चारों चीज क्या है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि। आज का सुबह का क्लास था जो माला देने का टाइम पे, तो वो एक व्यक्ति दिल्ली से आया था, बोला संसार में बहुत सारे लोग सुखी है, अधर्म करने के बाद ज्यादा सुखी होते हैं। वो ऐसा प्रश्न पूछा, बोला अधर्म करने से बहुत सुखी होता है। मैं बोला देखो अधर्म इसलिए करता है क्योंकि पिछले कर्म इसी प्रकार किया है, करने के नाते अभी आपको दिखाई दे रहा है वो अधर्म कर रहा है कि धर्म कर रहा है, हो सकता है वो अधर्म कर रहा है, अधर्म करने के बाद उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन आप भिखारी बन गए लेकिन आप पिछले कर्म, बोला इसको कौन देखता है, पिछले कर्म कौन देखता है, पिछले कौन किया क्या किया, और अभी आप गारंटी बता रहे हैं आप भगवत धाम जाओगे आपको प्रभु का माला जपने से प्रभु का नाम जपने से आप क्या गारंटी दे सकते हैं। मैं बोला निश्चिंत गारंटी है, भगवान स्वयं बोला है, तो भगवान का वचन क्या झूठा है, हो सकता है मेरा वचन झूठा है सकता है क्योंकि मैंने इतना ये नहीं किया, लेकिन भगवत गीता में बोल रहा हूं, गीता क्या झूठा है, ये संसार चला जाएगा, ये धरती चला जाएगा, और ये सूर्य रोशनी देना बंद भी कर देगा, लेकिन भगवान का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। ये संसार से हम, ये धरती से हमारा, हम ये शरीर को छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, लेकिन भगवद गीता हमेशा के लिए रहेगा, सत्य वचन, भगवान का मुख अनुषित वाणी हमेशा के लिए सत्य और सत्य वचन है, और सत्य वचन कभी झूठा नहीं होगा। भगवान प्रमाण दे रहे हैं, आप जब करोगे मेरा पास आओगे, नहीं करोगे तो कहां से आओगे। तो इतना समझाने के बाद बोला ठीक है, हम देखते हैं करते हैं। बोला प्रयास करूंगा। मैं बोला कभी खाने के लिए प्रयास करते हो? खाने के लिए कभी कोई प्रयास करता है? भूख लगता है तो ऑटोमेटिक जाकर पहुंच जाते हो। और भक्ति के लिए प्रयास करना है, भगवान के पास जाने के लिए प्रयास करना है। कितना उनको समझा मतलब मेरा समय हो चुका है, मैं इतना आपको ये नहीं कर सकते, फिर 10 बजे के बाद आप आओगे तो मिलोगे तो फिर आपको कुछ बता सकता हूँ। फिर भी इस प्रकार उनको बता के फिर आगे आ गया। तब कोई देवता लोग का पूजा करता है, देवता लोग भी नश्वर है, ये भागवत में प्रमाण है। कहते हैं भगवान कहते हैं यह सत्य है, जब वे देवतागण नश्वर है तो भला उनके भक्तगण किस प्रकार अनेश्वर होंगे, वो भी नहीं हो सकते हैं। किंतु मैं अनेश्वर, भगवान कहते हैं मैं अनेश्वर और नित्य हूं, और मेरे भक्तगण भी अनेश्वर और नित्य है। श्रीमद् भागवत के द्वारा भी यह प्रमाणित होता है। भवानेक शिष्यते शिष्यज्ञ अर्थात अनंत संज्ञावाच्य एक आप ही वर्तमान रहते हैं, और भी एक नारायण एवासीन ब्रह्मा न च शंकर, अर्थात पूर्व में एक नारायण ही थे, ना ब्रह्मा ना शिव जी, तथा प्रार्धन्ते स्व अवधूत गोप रूप में पुरस्तदा विभर भुव, अर्थात प्रार्ध के अंत में उन्होंने समझा कि मैं गोप रूप से उनके सम्मुख आविर्भूत हुआ था। न चेव्यन्ते च मद भक्ता महत्या प्रलयादपि, मेरे भक्तगण सुमहत प्रलय में भी चीतो पुनरावर्तित तो नहीं होते हैं। जैसा भगवान नश्वर नहीं है, इस प्रकार भक्त भी नश्वर नहीं। इसलिए कहते हैं भक्त और भगवान का साथ हमेशा घनिष्ठ संबंध रहता है, ये संबंध टूटता नहीं, हमेशा के लिए कभी टूटा नहीं मिलेगा, भगवान और भक्त के साथ संबंध। और अभी भी हम लोग का प्रभु के साथ संबंध है, संबंध है, इसीलिए हमें भक्ति में आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये संबंध को भूल चुके हैं, इसीलिए सर्कल जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि जो सर्कल है, जन्म मृत्यु का सर्कल के अंदर वो घूमते रहते हैं। जब वो समझ जाएंगे भागवत को और भगवद गीता को समझ जाएंगे, प्रभु के साथ हमारा संबंध है, वो फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम इसके अंदर आना नहीं पड़ेगा। और एक ही कारण है, ये पुनरपि मतलब जन्म मृत्यु सर्कल के अंदर नहीं आना पड़ेगा, क्या करने से? सिर्फ सत्संग, सत्संग। इसलिए कहते हैं सत वस्तु को सुनने के लिए बाई कान दिया गया। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत वस्तु के बारे में सुनना है। और सत्य है क्या? प्रभु ही सत्य है, और सब असत्य है, और सब असत्य है, प्रभु ही सत्य है। इसलिए सत वस्तु के बारे में कहां चर्चा होता है? साधु महात्मा सत्संग ही करते हैं। इसलिए कहते हैं जैसा संग ऐसा ही रख। सत्संग के अंदर विशेषण कुछ नहीं होता है, विषय के बारे में चर्चा नहीं होता है, सत वस्तु के बारे में चर्चा होता है, भगवान के बारे में चर्चा होता है। जब भगवान के बारे में वो सुनेगा, उसका अंदर मन का अंदर संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब विषय का संग करता है, विषय भोग के बारे में चर्चा होता है और वहां सुनता है, तब क्या होता है? मन का ऊपर मलिन पड़ना चालू होता है, मन का ऊपर कलमशता ढक जाता है। मन कभी भी 2 मिनट के लिए भक्ति के बारे में चर्चा का कहां भी चर्चा होता है वहां पे बैठना नहीं देता है। 2 मिनट में वो भक्ति में बैठने नहीं देगा, वो इमीडिएटली विषय भोग में कैसा जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग जब वो मंदिर आते हैं, आप किसी को भी बताओ थोड़ा बैठो थोड़ा सुनो भगवान का बारे में, वो 2 मिनट बैठता है, 2 मिनट का बात है दोनों पैर उठाकर बाहर चलना पड़ता है, क्योंकि विषय भोग में। इसलिए कितना जगह पे एग्जाम्पल देते हैं, सारा संसार एक कीचड़ है, कीचड़ में बहुत सारा कीड़ा होते हैं, एक ही कीड़ा को उठाकर बाहर फेंक दो, वो कीड़ा क्या करेगा? घूम फिर कर आके कहां जाएगा? उसी कीचड़ में जाएगा। उसी प्रकार हमारा मन, क्योंकि कितने जन्मों से विषय भोग करके आया है, इसे संसार के लोग कितने विषय भोग करके आए हैं, तब उनको थोड़ी समय के लिए बैठ के भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए बोलो, नहीं लगेगा। मन को नहीं लगता है, फिर भी हमको जबरदस्त मन को करना है, मन को हमेशा के लिए जबरदस्त करना पड़ता है। और मन एक ही बार प्रभु का शरण में लग गया, प्रभु का भक्ति में लग गया, और विषय का साइड कर देगा, विषय भोग को साइड कर देगा, कभी विषय देखने ही से थूक मारेगा। कहते हैं कि छह शंका पर मनुष्य का जीवन में अशांति और परेशानी तब शुरू हो जाती जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता है, तो परेशानियां चालू होता है। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इसका बारे में नहीं सोचता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी, घर, परिवार, बच्चे सब हो गए, गाड़ी खरीद ली, ये सब करने के बाद भी मनुष्य जीवन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके लिए ये जीवन मिला उसको तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं। जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था, उसके लिए उन्होंने समय नहीं दिया, संसार की वस्तुओं के जुटाने में समय नष्ट कर दिया। जीवन मिला था प्रभु का होने और प्रभु का पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगता है, और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रत्न मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोक भी तरसते रहते हैं, देवता लोक भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते रहते हैं, इस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में गवा देता है। देवता लोक का पास भोग की कमी नहीं है, स्वर्ग लोक में भोग का कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोक मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा और हरि का कृपा से सत्संग का सानिध्य मिलता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है, सत्संग में जो आनंद है वो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। कबीर जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीर रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ में न होए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुल ना ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मुख्य के सब सुख को तराजू के एक ही पलटे में रखिए, ते भी वे सब सुख मिलकर भी दूसरे पलटे में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते। जो क्षण मात्र के सत्संग में मिलता है, सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को देखता है और साथ साथ चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग से मनुष्य जीवन का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। सत्संग मूद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सत्संग सब मंगल का मूल है, क्योंकि सारा व्यक्ति बोलता है कैसा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए। मैं सुबह का समय में जब लेक्चर देता हूं तब हर व्यक्ति बोलता हूं मंगल आरती में आइए, सुबह भी लेक्चर में, फिर शाम का लेक्चर में भी बोलता हूं मंगल आरती में आइए, क्यों? हर व्यक्ति चाहता है कैसा मंगल हो जाए। क्या मंगल का कर्म करेगा तो मंगल होगा ना, मंगल का कर्म नहीं करेगा मंगल हो जाएगा ना? मंगलवार को मंगल होता है, ऐसा है क्या? मंगलवार को मंगला मंदिर में चला जाएगा तो मंगल हो जाएगा? मंगल नहीं होगा। तो मंगल क्या हो, मंगल कैसा होगा? तो सत्संग में आने मात्र से मंगल होता है। फिर उनका दूसरा अर्थ मैं बताता हूं, क्योंकि उनको कहता हूं कम से कम एक बार तो मंगला आरती में आप भाग लीजिए। दिन भर तक आप इधर उधर काम करते हैं, सुबह जल्दी उठ के कम से कम मंगला आरती कर लीजिए, तब आपका दिनचर्या मंगल हो जाएगा। कैसा? क्योंकि प्रातः मुहूर्त से दिनचर्या चालू होता है, दिनचर्या कब से चालू होता है? प्रातः मुहूर्त से। तो प्रातः मुहूर्त आपको सही से चलाना है। सही से चलाना मतलब सुबह उठ के पहले प्रभु का दर्शन कर लो, प्रभु इमीडिएटली आपका दिनचर्या को मंगल कर देंगे। तीसरा अर्थ में कहते हैं, और बाई चांस आप सुबह उठते नहीं तब सूर्य देव ने उसका आयु को घटा देता है। ये डिपार्टमेंट है, देवता लोग का सब डिपार्टमेंट है जो कि अपना आयु को घटाते हैं। अलग अलग का डिपार्टमेंट, जैसा इंद्रदेव, इंद्रदेव का डिपार्टमेंट क्या करेगा? सिर्फ बारिश करेगा। जैसा ऑफिस होता है, ऑफिस में सब डिपार्टमेंट होता है, उसी प्रकार हर देवता लोग का डिपार्टमेंट है। तो एक ही उनका एग्जाम्पल दिया उनको थोड़ा सा डराने के लिए, कम से कम मंगल आरती में आ जाए। तो उनको सूर्य उगने का पहले व्यक्ति जागता है तो पहले आके भगवान का दरबार में दर्शन करें। फिर भाई चंद साहब मंदिर नहीं जा पाते हैं तो वो घर का अंदर मंदिर बना के भगवान तो आरती करें, मतलब घर को तो पवित्र करें। फिर उनको बताता हूँ कम से कम आप लोग के घर को पवित्र करने के लिए क्या करना चाहिए। कम से कम भगवान के लिए दीप और धूप अगरबत्ती जलाना चाहिए। भाईजान साहब आप ये अगरबत्ती नहीं जला करें, ये अगरबत्ती चालू करते हो तब क्या घर पवित्र होगा ना मंगल होगा। ये अगरबत्ती मतलब सबको मालूम है ना, भारत में हर घर पे, हर जगह पे, हर समय पर ज्यादा से ज्यादा लोग चलाते हैं। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था तो ट्रेन में तब सुबह सुबह हम लोग तो 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ के तब क्या करते हैं, थोड़ा सा स्नान सोच कर लेते हैं, सोच करके थोड़ा माला जपते हैं। मेरा सामने में पास में कोई बैठा था तो बैठ के, तो सुबह का समय था और सुबह सुबह उठ के वो क्या कर रहा था, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा था। मैं बोला क्या हो रहा है, बोला हवन हो रहा है। बोला कौन सा मंत्र से, बोला आपको खुद खुद नहीं दिखाई दे रहे, मंत्र बाहर नहीं निकलना होता है, अंदर अंदर ही मंत्र होता है, इसलिए अंदर से मंत्र से और बाहर धुआं फेंकता रहता है। बोला ऐसा हवन, मैं बोला उनको क्या समझाऊं, फिर और कुछ नहीं बोला मैं, बोल के फिर मैं अपना माला करते रहा। तो लोग को कितने प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते थे, अलग अलग टाइप का लोग को कैसा समझा जा सकता है। तो वो सुबह का समय जो मंगल करने के लिए चाहते हो कम से कम सुबह का टाइम पे भगवान का आरतिया करें। कहते हैं दूसरा अर्थ में, जब लंका में गया था हनुमान जी, लंका में जाके देखा चार तरफ ढूंढा, सब कुछ हो गया, होने का बाद है एक ही घर का सामने गया। किसका घर का सामने? विभीषण का घर का सामने जब गया तो विभीषण का घर का सामने से क्या सुनने मिला? राम का नाम सुनने मिला। तब हनुमान जी कान देकर सुनते रहा क्या आवाज निकल रहा है, फिर भी हनुमान जी आश्चर्य हो जाते हैं। क्या आश्चर्य होता है, लंका राज्य में, असुर राज्य में राम का नाम, ये आश्चर्य हो जाते हैं। तो आश्चर्य होने का नाते हनुमान जी क्या करते हैं, तो दरवाजे को ठुकराते हैं, क्योंकि पहले कॉलिंग बेल नहीं था, पहले कोई मोबाइल नहीं था जो कि व्हाट्सअप कर दो कि मेल भेज दो। तो हनुमान जी ठुकराया, तो वो दरवाजा ठुकराने के बाद विभीषण भी आश्चर्य होता है, सुबह सुबह कौन आकर डिस्टर्ब कर रहा है, कोई ना कोई परेशानी हो जाएगा ना, सुबह सुबह कोई व्यक्ति आएगा ऐसा आवाज देगा। तो विभीषण परेशानी होके फिर बोला अरे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, फिर उठ के जाके दरवाजा खोलते है। दरवाजा खोलते है तो फिर हनुमान जी के साथ मिलन होता है। बहुत सारा ये अलग ये है, लेकिन हनुमान जी के साथ फिर विभीषण का वार्तालाप होता है। कहने का अर्थ है सुबह सुबह ये समय था, सुबह का समय था जो कि प्रभु का नाम लेके मंगल करना चाहते हो तब यहाँ पे वही चीज आता है। सत्संग सब मंगल को, मंगल का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होने का बाद भगवान से प्रेम होता है, और प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होता है। जिन प्रेम किया तीन प्रभु पाया, सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों को पाप नष्ट हो जाते हैं, सत्संग से मनुष्य का मन बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सत्संग से भक्ति का मजबूत होती है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पाव ही प्राणी। भगवान की जब कृपा होती है तब मनुष्य को सत्संग और संत का संग प्राप्त होता है। सत्संग से बताई जाने वाले बात को जीवन में धारण करने पर भी आनंद की प्राप्ति होता है, प्रभु से प्रीति होती है। आज मनुष्य के मन और बुद्धि बिकला में फंसती जा रहे, मनुष्य हर पल चिंतित रहने लगता है और हमेशा परेशानियां रहता है, इन सब का कारण अज्ञानता है। भगवान ने ये अनमोल रत्न मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया। जब कोई जब कोई घर पर लेकर जब कोई यहां पे क्या है उसके साथ साथ एक जब जब भगवान ने मनुष्य शरीर देते हैं उसका साथ साथ कुछ देते हैं, इसका एग्जाम्पल उसको देते हैं। कभी कोई भी वस्तु को खरीदी करता है, खरीदी करने के साथ साथ जो भी वस्तु खरीदी करता है उसका साथ एक बुकलेट आता है। क्या आता है? बुकलेट आता है। बाई चांस एग्जाम्पल देते हैं कि मोबाइल की, बाई चांस आप खरीदी करते हैं आईपॉड की, खरीदी करते हैं लैपटॉप, उसका साथ एक ही बुकलेट आता है, छोटी किताब आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको पढ़ के उसको अपडेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए। उसी प्रकार भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिए है, मनुष्य शरीर का साथ साथ गीता और भागवत दिए। किस प्रकार मनुष्य जीवन को सफल करना है इसको पढ़ के हमें सही दिशा से सही मार्ग पर चला सकते हैं, और कुछ उपाय नहीं। इसलिए ये शास्त्र को पढ़ना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, सत्संग से जो ज्ञान मिलता है उसको हृदय में धारण करके मन से चिंतन करना चाहिए, इसको कहते हैं सत्संग। इसलिए कहते हैं दो श्लोक में एक ही अभद्र श्लोक आता है, भागवत में दो श्लोक है, दो श्लोक में एक ही अभद्र श्लोक आता है। आप लोग हर दिन इसको उच्चारण करते हैं, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवाया। नित्यम कहा गया, अनित्य नहीं, नित्यम डेली इसको पढ़ना है। नित्यम भागवत सेवाया, भागवत सेवा करना मतलब हाथ से सेवा नहीं, सेवा कान से करने का, सेवा कान से करना जाता है, इसलिए सुनने। इसलिए दूसरा कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का सेवा करना, हरे कृष्ण महामंत्र को जपना मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का सेवा हो गया। तब नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा है, भागवत उत्तम श्लोक है, भक्ति भवती नैष्टिकी, भागवत सुनने से अभद्र कल्मषता दूर हो जाता है। ये एक श्लोक में कहे। दूसरा श्लोक में वही भागवत प्रथम स्कंद में ये कहते हैं, फिर दूसरा श्लोक में कहते हैं, प्रथम स्कंद सेकंड चैप्टर 18 नंबर श्लोक में ये कहते हैं, और 17 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, सुनोताम शो कथा। यहां पे शो कथा आया, भगवान दूसरा का बात नहीं कहा, कोई देवी का कथा नहीं कहा, किसका कथा, शो कथा, मेरा बारे में, भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरा बारे में। वहां पे जैसा भगवत गीता में जैसा कहते थे, हाँ मेरा बारे में चिंता, मेरा को पास पूजा, मेरा को पूजा करना, मेरा पास आओगे, हाँ मेरा को भोग लगाओगे तो मेरा को नमस्कार करोगे, उसी प्रकार यहाँ पे कहते हैं सुनोताम, सुनना है किसका बारे में, भगवान का बारे में। सुनोताम शोकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतिष्ठो अभद्राणी, वहां पे अभद्राणी आया, वहां पे अभद्र और अभद्राणी, अभद्राणी विधुनादि श्रुत सताम, विधुनति धुनति और विधुनति विशेष रूप में धो जाएगा, धो जाएगा मतलब सफाई हो जाएगा, श्रुत सताम, सफाई हो जाने का बाद क्या होगा, श्रुत भगवान का श्रुत बन जाओगे, मित्र बन जाओगे और भगवत धाम को चला जाओगे। लेकिन शो कथा जो शब्द है उसको समझना है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरा बारे में सुनना है। और जब हमें भगवान का बारे में नहीं सुन के और दूसरा कुछ सुनते हैं तब उद्धव जी तब भागवत एकादश स्कंद में कहते हैं, कहते हैं विषयान धायत शीत विषयेशु विसज्यते मामनु स्मरत शीतम मईव प्रबिलियते, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का ध्यान करने वाले का मन निश्चय ही ऐसी वस्तु में उलझा रहता है, किंतु यदि कोई निरंतर मेरा स्मरण करता है तो उसका मन मुझ में निमग्न हो जाता है। लेकिन सुबह से शाम तक विषय में मन लगा रहेगा और विषय बारे में चर्चा करते रहोगा और कोई विषय का बारे में कोई व्यक्ति सुनते रहेगा तो भगवान का साइड में जाएगा हमेशा के लिए? सुबह से शाम तक वही विषय का बारे में चर्चा करते रहेगा, सुनने के लिए भी उसको विषय का बारे में सुनने के लिए उसका आनंद लगेगा, वो आनंद उसी में रट चुका है। इसलिए कहते हैं भगवद गीता का जो श्लोक है सेकंड चैप्टर का 62 और 63 नंबर श्लोक में दोनों श्लोकों कंबाइन है, धाय तो विषयाना पुंसो, जो व्यक्ति विषय का बारे में चर्चा करता है और सुनता है और मन कहाँ जाएगा, वहीं पे। इसलिए कहते हैं धाय तो विषयाना पुंसो, उसका ध्यान हमेशा विषय का प्रति लगा रहेगा, उसे ऊपर उठ नहीं सकता है, और कैसा भगवान का धाम को जाएगा, कैसा भगवान को प्राप्त करेगा। शिले भगवान को प्राप्त करने के लिए शिला प्रभुपाद कहते हैं लास्ट में, क्या कहते हैं, जो लास्ट ये लास्ट सेंटेंस में कहते हैं, आपको कृष्ण लोक को जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, वैकुंठ लोक को जाना है, तब आपको गुरु ग्रहण करना जरूर चाहिए। क्या करना पड़ेगा, गुरु ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरु क्यों ग्रहण करना है, और स्वयं भगवान होके फिर भी गुरु ग्रहण किए। भगवान कृष्ण का भी गुरु था। भगवान कृष्ण का गुरु का नाम क्या है? संदीपनी मुनि। आश्रम कहां पर है? वहां पे पढ़ाने के लिए संदीपनी स्कूल खोला था और संदीपनी स्कूल के अंदर ये जाते थे कृष्ण और बलराम पढ़ने के लिए। स्वयं गुरु ग्रहण किया। और भगवान राम भी गुरु ग्रहण किया। भगवान राम का गुरु का नाम क्या है? और जब भगवान स्वयं गुरु ग्रहण किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी गुरु ग्रहण किया, तो भगवान जब वशिष्ठ है भगवान राम का गुरु का नाम, तब गुरु जब ग्रहण किया है तब हम कौन है? तब इसलिए कहते हैं गुरु ग्रहण करना है। और गुरु का ग्रहण करना मतलब गुरु का ग्रहण करने का बाद है क्या है? आपको गुरु का नियम, गुरु ने जो बताया उसको पालन करना है, वो आदेश को पालन करना है। तो गुरु जरूर हो जाएंगे और आपको कृष्ण लोक में वास देने के लिए आपके लिए घर बना देंगे। ऑलरेडी गुरु वहां पे ऑलरेडी आपके लिए घर बनाकर रखा है। लेकिन आप कितना भक्ति करते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं अब गुरु ने दीक्षा दे दी तो हो गया, उसे सोचते हैं। अरे ऐसा नहीं, आपको मंत्र जप करना जरूरी है। क्योंकि ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के लिए ऐसा गुरु मिला। ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का गुरु का नाम क्या है? ये जवानी का गुरु है। ये जवानी का टाइम पे मतलब बचपन का, बचपन में ये नारद मुनि का शिष्य थे। हाँ, नारद मुनि का दो शिष्य है जो कि प्रहलाद और नारद प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज और दो डिसाइपल भी है नारद मुनि का। चार डिसाइपल कहते हैं, चार डिसाइपल, दो जवानी और दो बूढ़े के, मतलब उम्र हो गया था और दो से तो है। लेकिन कहने का अर्थ है इतने अच्छा गुरु मिलने का नाते फिर भी प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज फिर भी क्या करते थे? मंत्र जपते थे। और हम लोग सोचते हैं गुरु मिल गया तो सब कुछ हो गया, माला को दूसरा साइड में, हम दूसरा साइड में चलते रह रहा है, ऐसा होगा तो कैसा कल्याण होगा? इसलिए हमको हर दिन सुबह से शाम तक के अंदर जब भी समय मिलता है हमको प्रभु का नाम का पर निष्ठा और गुरु निष्ठा भक्ति, इसको कहते हैं गुरु निष्ठा भक्ति। गुरु ने जो बोला है इसको पालन करें। मेन पॉइंट कहाँ है? आपको माला जपना है, प्रभु का नाम जपना है, और ये नाम ही आपको धाम पहुंचाएगा। ये नाम ही आपको धाम पहुंचाएगा और कोई सहायता नहीं करेगा। सहायता करेगा वही नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं प्रांच प्रहर धंधा किया, तीन प्रहर गए सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहां से होए। पांच प्रहर सो गया, पांच प्रहर धंधा किया। प्रहर का तीन घंटा होता है, कितना होता है? तीन घंटा। पांच प्रहर काम किया, कितना घंटा हो गया? 15 घंटा धंधा किया, सवा काम करते रहा, और कितना घंटा सो गया? 3 घंटा सो गए। 3 घंटा सोने में दे गया तो कितना घंटा उसका हाथ में बचा? उस बचा क्या? एक ही सेकेंड भी सत्संग में दे दे, इसलिए कहते हैं एक घड़ी ना सत्संग किया। एक घड़ी, एक घड़ी का कितना समय होता है? 5 मिनट पता नहीं कितना होता है, उसका तो हिसाब किताब भागवत में भी है। लेकिन एक घड़ी, एक सेकेंड भी भगवान का सत्संग में नहीं दिया तो मुक्ति कहां से होगा? और सारा संसार का लोग बोलते हैं मुक्ति मिले मुक्ति मिले मुक्ति मिले, इसलिए कहते हैं आप करोगे कृष्ण का भक्ति, कृष्ण दिलाएंगे आपका मुक्ति। तो कृष्ण भक्ति करो, प्रभु का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृत राशि मन भागवतम की।